लेकिन सरकार हमें भी कह देना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों को पता नहीं है कि आपको देह देने में कष्ट होगा, तो आपको भी पता नहीं है कि हम लोग कितना दुख में हैं और कितना दिन होकर आपसे मांग रहे हैं, आपको भी पता नहीं है हमारे संकट का, और हम लोग तो स्वार्थी हैं ही, आपके मरने का दुख का पता हम लोगों को नहीं, लेकिन आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आपके भजन पूजन में कुछ नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही आप भी हैं, कोई अंतर नहीं हुआ। यदि वेद न याचेत नेति नह जदीश्वर, यदि हम लोग आपके दुख को समझते तो हम लोग आपसे मांगते नहीं, और आप भी यदि हम लोगों के दुख को जान गए होते सरकार तो ना ही कभी नहीं कहते आप हम लोग कितने दुख में हैं और कैसे कैसे आपके चरण में आकर के गिरे हैं, लेकिन आप हम लोगों का दुख नहीं समझ रहे हैं, और वैसे हम लोग भी आपका दुख नहीं समझ रहे हैं। अथवा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हैं, नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम। ये जो दुनिया के लोग हैं मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, दूसरे के संकट को नहीं जानते हैं। तो मानो यह बात दधीची जी कहते हैं, यदि वेद न याचेता, यदि आप लोग हमारे दुख को समझते कि शरीर त्यागने में मरने में कितना कष्ट होता है, तो आप याचना नहीं करते, मांगे नहीं होते आकर के यहां। तो देवता लोग कहते हैं, ठीक कहते हैं सरकार, नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम। ये लोक, आप जैसे लोग भी दूसरे के कष्ट को नहीं जानते हैं, अगर जानते तो न इति न आह जदीश्वर, देने में समर्थ व्यक्ति है तो ना ही नहीं कर सकता था। तो दोनों का श्लोक बोला हुआ, देवताओं का भी और ऋषि दधीची का भी। दधीची मुनि ने कहा कि अगर आप लोग दाता के कष्ट को समझते तो मांगते नहीं, हमसे आकर मांगे नहीं होते। तो देवताओं ने कहा, हां आप भी याचक के कष्ट को अगर समझे होते ना तो नहीं नहीं कहते, और समर्थ होते वे भी। ये संसार में देखा जाता है, मांगने वाला दान देने वाले के कष्ट को नहीं समझता है। यदि मांगने वाला तो इतना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दे दे, है ना, वो उसके संकट को नहीं समझता है कि इसको मोर्गेज देना है, इसको टेलीफोन का बिल देना है, वो देना है, इंश्योरेंस देना है, ये देना है, वो देना है। मांगने वाला कभी विचार नहीं करता है ना। लेकिन कोई कोई दाता भी ऐसे होते हैं कि मांगने वाले के कष्ट को नहीं समझते हैं। उनके पास होता भी है, बहुत बड़ी राशि होती है समुद्र जैसे, लेकिन एक बूंद नहीं पीने को मिलता है, तो वो भी मांगने वाले के कष्ट को नहीं जानते। और यदि याचक दाता के कष्ट को जान जाए तो न याचे, तब मांगेगा नहीं, याचना नहीं करेगा, और दान देने में समर्थ व्यक्ति है और मांगने वाले के कष्ट को जान जाए तो वो ना ही नहीं कर सकता है, वो अवश्य देगा। तो जैसे हम मूर्ख हैं वैसे तो आप भी गए बीते ही हैं, कुछ कोई अंतर नहीं हुआ, बेकार भगवान प्रशंसा कर रहे थे आप। देवता लोग भी समझ रहे थे कि दधीची मुनि देना चाहते हैं लेकिन ऐसी बातें बना रहे हैं, क्योंकि देवता तो सर्वज्ञ होते हैं, उनके मुख को देख करके, उनके भाव भंगी को देख करके वो समझ गए। ऐसा नहीं था कि देवता नहीं समझ, इसीलिए वे लोग भी व्यंग में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे दुनिया जीना चाहती है, खाना चाहती है, मरना नहीं चाहती, वैसे आप भी हैं कोई विशिष्ट, इतना भजन तप विद्या करके भी वही रह गए जहां थे वही। तो यदि कोई व्यक्ति समर्थ है, ईश्वर है, यहां ईश्वर शब्द दिया, ईश्वर का अर्थ होता है समर्थ, यदि देने की शक्ति है उसमें, किसी के कष्ट को मिटाने की शक्ति है, तो उसे चाहिए कि उसके कष्ट को मिटावे। ये देवता लोग मानो उपदेश कर रहे हैं, और मांगने वाले को भी उपदेश कर रहे हैं कि उसे देने वाले के भी संकट को समझना चाहिए। देने वाले कष्ट को समझना चाहिए। परंतु इस दुनिया में लोग बहुत स्वार्थी होते, एक दूसरे के कष्ट को नहीं समझते। देवताओं की यह बात सुनकर दधीचि मुनि कहते हैं, श्री ऋषि रुवाच, धर्मम वह स्रोतु कामे न यूयम में प्रत्युदाहृता एष वह प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। हे देवताओं, आप लोगों के श्रीमुख से धर्म की बात सुनने के लिए मैं आप लोगों को जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों के हित के लिए इस देह का त्याग करूंगा, मैं देह दूंगा, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। मैं दूंगा। देवता तो पहले ही समझते थे, भगवान जिसकी प्रशंसा किए और वो व्यक्ति मुकर जाए दान देने से, ऐसा कैसे हो सकता था। धर्मम वह स्रोतु कामेना, दधीचि मुनि ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप धर्म का उपदेश करें, यही सुनने के लिए मैं नकार दिया, अन्यथा मैं तो इस शरीर का त्याग करूंगा। संत्यजामि, इस शरीर का मैं त्याग करूंगा, छोड़ूंगा, क्योंकि त्यजंतम, यह जो शरीर है वो तो हमको छोड़ ही रहा है, यह एक दिन छोड़ देगा पूरा पूरा, और अभी से आत्मा का साथ नहीं देता है शरीर, शरीर आत्मा का साथ नहीं देता है, आत्मा इसके पीछे लगा हुआ है। तो त्यजंतम संत्यजामि, हम जो शरीर मुझे एक दिन छोड़ देगा और अभी भी छोड़ ही रहा है, तो इस छोड़ने वाले शरीर को मैं छोड़ूंगा। संसार में जो विषयी लोग हैं, देह में आसक्त हैं, तो वे लोग देह नहीं छोड़ते हैं, देह उनको छोड़कर गिर जाता है, लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, योगी होते हैं, वे लोग देह छोड़ते, जानबूझ करके देह छोड़ते हैं, तैयार रहते हैं, भगवान में मन लगा करके देह का त्याग कर देते हैं। तो दधीचि मुनि कहते हैं संत्यजामि, मैं अपने देह का त्याग करूंगा, क्योंकि देह एक दिन छोड़ देगा। तो आत्मा को देह दिया गया है, लेकिन देह जब वृद्ध होने लगे, बूढ़ा होने लगे, खास करके जब केश श्वेत होने लगे, चमड़ा ढीला होने लगे, दर्द होने लगे घुटने में आदि में, और सुनाई कम पड़ने लगे, दिखाई कम पड़ने लगे, पचाने की शक्ति उतनी नहीं रह जाए, तो समझना चाहिए देह अब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपना वो एग्जिट ले लिया। वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया, देह अब आत्मा का साथ नहीं देना चाहता। वैसे तो जड़ है, चाहना नहीं चाहना उसके विषय में क्या है, लेकिन देखा जाता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए वृद्ध शरीर में है, शरीर बूढ़ा होने लगता है, तो आत्मा पसंद नहीं करता है कि शरीर बूढ़ा हो, आत्मा तो यही चाहता है कि हमेशा 20 वर्ष 16 वर्ष का बना रहे शरीर, आत्मा यही चाहता है, लेकिन उसके चाहने के बाद भी देह पुराना होता जाता है, क्योंकि वो अब देह आत्मा को छोड़ना चाहता है, आत्मा तो कभी नहीं छोड़ना चाहता है, आदमी 100 वर्ष से ऊपर का भी हो जाए लेकिन फिर भी नहीं मरना चाहता, कभी भी नहीं मरना चाहता। एक बार हमारे गांव में एक माता जी थी, वो 104 वर्ष की हो गई थी, बहुत लंबी जिंदगी, तो हम लोग उनका दर्शन करने एक बार गए थे, तो माता जी हमसे कहने लगी कि वो तो गांव की भाषा में बोली, लेकिन उसका अर्थ है, वो कहने लगी पता नहीं जमराज हमारा कागज कहां भुलवा दिया, मतलब जो मारने का टाइम लिखा था कागज में वो भुलवा दिया जमराज, इसीलिए अब मैं मरूंगी नहीं, और जो नोटिस ही खो दिया भूल गया तो क्या हो। तो मैं पूछा कि ठीक है जमराज जी के ऑफिस से कागज गुम हो गया, भूल गया तुमको मारने वाला कागज, क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ मरना चाहती हूं, इस प्रकार के बूढ़े शरीर में रहकर क्या करूंगी, मरना चाहती हूं। तो मैं कहा कि अगर मरने की इच्छा है, तो मैं झूठ मूठ के कहा कि ये बिजली का तार है और हम लोग जब घर से बाहर चले जाते हैं 10 मिनट के बाद इसको छू लेना है, ये इलेक्ट्रिक का वायर है, इसमें करंट नहीं था, मैं झूठ मूठ के कहा है, इसमें करंट है और छूओगी तो तुरंत मर जाओगे, अगर मरने की इच्छा है तो तुम इस तरह छू करके मर जाना, लेकिन हम लोग घर से बाहर जाएंगे तब तो। तो कहती ऐसे थोड़े मरूंगी तो ये कहो कि मरना नहीं चाहती हो। और मैं वृंदावन आया, आने के बाद वहां से फोन आया कि माता जी का कागज मिल गया, जमराज जी का ऑफिस में वो कागज मिल गया और ठीक टाइम से चली गई। तो इस तरह कागज तो लिखा हुआ है, अब तो लिखा क्या, सब कंप्यूटराइज्ड है, किस दिन शरीर छूटेगा, एकदम निफ डिफिनिट है वास्तव में। भले आत्मा चाहे या न चाहे, वो तो वृद्ध भी नहीं होना चाहता, रोगी नहीं होना चाहता, मरने की बात तो और दूर है, लेकिन आत्मा की इच्छा के बिना ही शरीर तो वृद्ध होता जा रहा है ना, इसको त्यजंतम कहते हैं। त्यजंतम वर्तमान क्रिया में है, जो छोड़ रहा है आत्मा को, तो जो हमको छोड़ रहा है और एक दिन छोड़ देगा, तो इसको मैं छोड़ूंगा, दधीचि मुनि कहते हैं, मैं इसको त्यजामि अहम, मैं इसको त्यागूंगा। इसके द्वारा मानो ये कह रहे हैं कि देह जो है अनात्म है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, यह एक वस्त्र की तरह है, गारमेंट की तरह है, इसको मैं छोड़ूंगा। इस तरह का विचार होना चाहिए मनुष्यों को, ये क्या देह मुझे छोड़ेगा, मैं इसको छोड़कर फेंक दूंगा, मैं जाऊंगा भगवान के पास। इस तरह का विचार होना चाहिए। तो वास्तव में शरीर छोड़ता जाता है आत्मा को। एक श्लोक में कहा गया है कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्वश्यम परिणामी पेशलम किमौ सधय क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। कुलशेखर जी कहते हैं कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, यह जो शरीर है ये सैकड़ों स्थान पर जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड है, नख से सिख तक ये कहीं आइटम है, सब जोड़ा हुआ है। सतसंधि जर जरम, संधि है, जगह जगह जोड़ा है, जैसे एक अंगुली में भी देखिए, यहां जोड़ा गया है, यहां जोड़ा गया है, एक दिन खोला जाए तो सब कल पुर्जे बिखर जाएंगे अलग अलग, कई जगह जोड़ा गया है शरीर। सतसंधि जर जरम, चाम हटा करके मांस हटा करके इसको बिखेरा जाए तो हजारों टुकड़े में शरीर हो जाता, हड्डियां इतनी जोड़ी गई और ऊपर से मांस का लेप किया गया है और इसके बाद चाम से मढ़ दिया गया है और ऊपर केस सटा दिया गया है, नाख केस आदि सब, तो ये तो सैकड़ों जगह जोड़ा गया है, तो अपने ओरिजिनल रूप में कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं, बिखर जाएगा। तो इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम परिणामी पेशलम, इसकी इसका जो पेशल है सौंदर्य है वो परिणामी है, सौंदर्य सब समय नहीं रहता है, सुंदरता सब समय नहीं रहती है, और पतती अवश्यम, यह अवश्य गिरेगा। जब आत्मा से शून्य शरीर हो जाता है तो यह गिर जाता है, आत्मा के रहते हुए भी गिर जाता है, चला नहीं जाता है, चाहे अस्पताल में गिरा रहता है, पतती अवश्यम। तो किमौ सधय क्लेश से मूढ़ दुर्मते, अरे मूढ़ अरे मूर्ख, बहुत बहुत मेडिसिन लेकर के क्यों और शरीर को सता रहे हो, क्या जरूरत है। निरामयम कृष्ण रसायनम पीब, यदि चाहते हो नित्य जीवन तो सब रोगों की दवा महामंत्र पिया करो, कृष्ण रसायनम पीब, कृष्ण की कथा और कृष्ण के नाम को पियो, बस ये ठीक करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कभी कभी स्वजन लोग मानते नहीं हैं, इतना विश्वास हो जाता है कि अमुक आदमी अब बहुत दिन का हो गया नहीं जिएगा, लेकिन फिर भी अस्पताल में भर्ती करके इधर से इंजेक्शन उधर से इंजेक्शन नाक में इंजेक्शन क्या क्या आखिर आदमी मर जाता है। बल्कि घर पर रखते महामंत्र का कीर्तन करते तो कम से कम शरीर छोड़ करके आदमी भगवान के पास तो जाएगा, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं कि जो धनी लोग होते हैं उनके शरीर में चारों तरफ इंजेक्शन इंजेक्शन डाल करके और दुख में मार दिया जाता है ना। अगर गरीब आदमी है तो चलो कम दवाई लेता है, लेकिन धनी तो इस तरह से किमौ सदै क्लिश्य से मूढ़ दुर्मते। ग्रंथकार कहते हैं कि क्यों इतनी दवा खा रहे हो और क्यों शरीर को सता रहे हो। शायद उसी समय इनको पता हो गया होगा कि ये जो एलोपैथिक दवाइयां हैं ये पॉइजन है, तभी तो कहते क्यों दुख दे रहे हो इन दवाइयों से। किम औषधय क्लिश्य से मूढ़ दुर्मति, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। आरोग्य का कारण भगवान का नाम है, उनकी कथा है, इसको खूब पियो। प्रतिदिन भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। यह हमें अमर जीवन देगा, सभी रोगों से मुक्त करेगा, ऐसा देखा गया है। असाध्य रोगों की चिकित्सा भगवान के नाम से हो जाती है। कई बार ऐसा सुना गया है, प्रिंटेड मैटर है, लोग सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे रोग हुए हैं व्यक्ति को कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान की शरण लेने से, नाम लेने से रोग दूर हो गया। और चरक जी चरक संहिता में लिखते हैं, जो बहुत बड़े वैद्य हुए ऋषि, वैदिक ऋषि, वो लिखते हैं कि कोई भी रोग विष्णु के स्मरण से ही नष्ट होता है। वो साफ लिखते हैं कि दवाओं में कुछ नहीं है, जबकि सबसे बड़े वैद्य हैं और दवा बताए हैं, इस रोग की यह दवा, इस रोग की यह दवा। और मैंने पढ़ा है सुश्रुत संहिता, उसमें भी सुश्रुत मुनि कहते हैं कि विष्णु का स्मरण करके दवा खानी चाहिए, और विष्णु के स्मरण से ही दवाएं काम करती है, नहीं तो नहीं कर सकती, ऐसा स्पष्ट लिखते हैं। तो बहुत बहुत दवा खाने से जो रोग नहीं चल जाता है वो भगवान को प्रणाम करने से चला जाता है। यह अनुभूत विषय है, जगत में देखा गया। इसलिए शरीर तो गिरेगा ही, और शरीर ऐसे भी सैकड़ों जगह जोड़ा हुआ है, यह तो नश्वान है। तो जब तक है तब तक इस शरीर से भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं तो जाएगा तो ये निश्चित। दधीचि मुनि कहते हैं कि तेजंतम संतेजा में हम, यह शरीर एक दिन मुझे छोड़ देगा, अतः मैं इसे छोड़ूंगा। और उस दशा में जबकि हमारे देह से आप लोगों का उपकार होने वाला है तो क्यों नहीं छोड़ूंगा, आखिर तो देह एक दिन जाएगा। और यह कह करके दधीचि मुनि फिर कहते हैं, उन लोगों के प्रति शोक प्रकट करते हैं जो लोग इस नाशवान देह से परोपकार नहीं करते। यो ध्रुवेण आत्मना न था न धर्मम न यश पुमान इहेत भूत दया सस्वच्छ स्थावरैरपी। यो अध्रुवेण आत्मना हे नाथा, नाथा का अर्थ हे जगत के ईश्वरों, हे स्वामियों, देवता लोग जगत के मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं, इसलिए उनको नाथा कह रहे हैं। हे नाथा, आप लोग वैसे भी महान हैं, जीवों का पालन करते हैं, तो इस संसार में जो अपने अध्रुव आत्मा से, आत्मा का अर्थ यहां देह, अपने नाशवान क्षणभंगुर देह से जीवों पर दया नहीं करता, उनका दुख नहीं मिटाता, और इस तरह से वह परलोक में स्वर्ग और इस लोक में जस नहीं कमाता है, वह धिकारने योग्य है, उसका जीवन विफल है। यहां तक कि ससुच्च स्थावरैरपि, वह स्थावर जोनी में रहने वाले जीवों के द्वारा भी धिकारने योग्य है। यह स्थावर जोनी में रहने वाले वृक्ष आदि भी दूसरे का कितना हित करते हैं। तो भगवान ने तो मनुष्यों को बुद्धि दिया है, वचन दिया है, अनेक क्रिया दिया है, इसके द्वारा दूसरे का हित करना चाहिए, हित करना चाहिए।